तीन तरफ की बातें
सीख
रही है ब्रह्मा सजस्ता ब्रह्माण है सरेश बताए ना बाबा।
हाँ जी,
मैं तीन तरफ का बात बताई गई है। पहला बात है, जब आदि में सुना जो सुनाई थी, जब वो समझना हुआ तब शिव प्रवेश हुआ। और दूसरी बात है, जब वो अंत में अधिपति है जब विकार अधिक होती है और सब वो डरते लगते हैं में वो करते हैं।
किसी आस पास वालों को बता दीजिए अपनी भाषा में जल्दी से।
विलाय की कैसेट
है,
एक विलाय की कैसेट में बताया गया है।
हाँ जी,
63 जन्म में राम वाले आत्मा उधर में उनसे लगता रहता है।
हाँ जी,
पर अंत में जब अंतिम हो जाती है तो अंत में वो थोड़ा थोड़ा
संकल्प आ जाता है। राम की आत्मा लड़ते लड़ते पतित बन जाते हैं लास्ट समय में, तब शिव प्रवेश हो जाता है,
हिम्मत आ जाती है।
हाँ,
और तीसरी बात तो बताइए, जब ब्रह्मा बाबा उसके पार्टनर के पार्टनर पर थोड़ा थोड़ा करके कब्जा करना शुरू करता है तब अंत में वो पुकारता है।
कौन पुकारता है?
प्रजापिता सेवक काम ने पुकारता है। जब ब्रह्मा बाबा अपने पार्टनर के ऊपर कब्जा थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा करता है, कब्जा ज्यादा करना चाहता है,
कब्जा करने की कोशिश करता है,
कब्जा करने की कोशिश करता है, कब्जा नहीं कर सकता,
कोशिश करता है तब पुकारता है। एक ही समय कब हुआ, क्या अलग अलग समय का हुआ, क्या तीन बार प्रवेश होगा
या क्या पूछना चाहते
हैं? ये तीनों बार प्रवेश बताया है, ये
तीन संदर्भ बताया ना,
इन्होंने समझ लिया है जो बोल लेते
वो, ये तीन पॉइंट्स जो भाई ने बताया।
कौन कौन से तीन पॉइंट?
पहला, जब माता ने जब सुनाई ब्रह्मा की बात, साक्षात्कार की बात तब समझने के लिए प्रवेश होता है प्रजा पिता में। दूसरी बात है, जब 63 जन्म में वो राम वाली आत्मा
उस समय समझने समझाने के लिए प्रवेश होता है या सिर्फ सुनने सुनाने के लिए प्रवेश हुआ?
समझने और समझाने के लिए प्रवेश होता है।
किसी ने समझा?
समझा
किसने?
प्रजा पिता।
और किसी ने नहीं समझा?
नहीं,
ब्रह्मा ने समझाता है तब समझते
हैं। यज्ञ के आज में शिव बाप आते हैं तो बाप में प्रवेश करते हैं समझने समझाने के लिए, लेकिन समझा किसने और समझाया किसको?
माता को समझाया।
समझा? कोई ने नहीं समझा, समझने वाले ने समझा लेकिन समझाया समझाया किसी को नहीं। उस समय समझाने का पार्ट ही नहीं था, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो समझेंगे क्या? वो समझाने की बात ही नहीं, खुद समझ लिया। तो बोला अलग को मिला अल्लाह, बे बाप सारी सारी बागीदार को दे दी, लो तुम लड़ाई करते हो, यज्ञ की राजाई तुम ही ले लो। ये अल्पकाल की राजाई है या सदा काल की? अल्पकाल की राजाई है। हाँ, और एक बात तो ये हुई,
दूसरी बात है, जब 63 जन्म में राम वाले आत्मा लड़ता लड़ता अंत में जब विदर्भ में ज्यादा
हिम्मत हार
जाते ज्यादा हो जाते हैं और तब वो राम वाले आत्मा थोड़ा सा संकल्प अनिश्चय में आ जाता है, उसी समय में शिव उसमें प्रवेश करता है।
ये भी उसी समय की बात है जब 36 से लेकर के 42-43 तक जो तीन विश्व युद्ध तक जब सारे भारतवासी आवाहन कर रहे थे हे पतित पावन आओ गांधी जी के नेतृत्व में, तो सबके आवाहन का उतना असर नहीं, लेकिन यज्ञ कुंड से जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई निमित्त तो कौन कौन बने, पहले ब्रह्मा फिर बाप, ब्राह्मण बच्चे भी बीच में आ गए, तो बाप को वैराग आएगा या नहीं आएगा, वैराग आ गया। जब पूरा वैराग होता है तभी ज्ञान होता है, बिन वैराग विवेकन हुई और राम कृपा बिन सुलभन सोई, यहाँ राम निराकार है और शिव बाप प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान की जब पराकाष्ठा होती है तभी वैराग होता है, अधूरा ज्ञान होता है तो पूरा वैराग नहीं हो सकता, पहले भक्ति फिर ज्ञान फिर वैराग। ज्ञान संपूर्ण रूप से उपजता है तो वैराग आ जाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो उसी समय की तो बात है, अलग अलग बातें थोड़े ही है। और तीसरी बात क्या है,
जब राम वाले आत्मा पर जब सेवक राम के रूप में काम करता था उसके दुकान में ब्रह्मा बाबा के दुकान में, अब ब्रह्मा बाबा उस पर कब्जा करने का कोशिश करता है,
वही तो बात हुई ना, ब्रह्मा की सोल जो है जैसे घर घर में होता है, जो तमो प्रधान माताएं होती है वो क्या चाहती है कि पति हमारी बात माने, हमारे कंट्रोल में चले, हमारी बात क्यों नहीं मानता, ऐसे होता है ना, तो जायज बात भी माने और नाजायज बात भी माने, तो हम तुम्हारी बन के रहेंगे नहीं तो नहीं बनेंगे। तो ये देवान की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो वैराग पैदा होता है, अगर पूरा ज्ञान होता उस समय तो ये वैराग जो है वो हद का रूप नहीं लेता, पूरा ज्ञान नहीं था इसलिए छोड़ करके चले गए।
तीन बार प्रवेश भगवान किया
है, कोई एक ही बार की बात है, समझाने से कोई नहीं समझता है, हम किसी को अपना समझते हैं और उसे अपनी बात समझाना चाहते हैं, और जिसको हम अपना समझते हैं वही हमारी बात अपोजिशन करता है, हमारी बात नहीं समझता, तो वैराग आता है या नहीं आता है, आता है।
बाबा ये ब्रह्मा की आत्मा ने
हाँ
अलफ को मिला अल्लाह बे को मिली बादशाही, ये ब्रह्मा की आत्मा ने कथ लिखा ना,
अलफ कौन है, तो बोला किसने,
नहीं ये ब्रह्मा बाबा दिखा कर को जीवन कहानी में बता रहे हैं, बोला
जीवन कहानी किसने लिखी है, अरे जीवन कहानी जो लिखी गई है वो किसने लिखी,
वही ब्रह्मा कुमारी ने लिखा है,
ब्रह्मा कुमारी ने थोड़ी लिखी, जगदीश भाई ने लिखी, उन्होंने उसका कलेक्शन किया, अलग अलग ब्रह्मा कुमारियों ने अलग अलग मतों से अलग अलग सिरों से अपना अपना अनुभव गढ़ करके उसमें रख दिया, तो जो भी जीवन कहानी लिखी गई है
तो ये बात मुरली में भी आता है।
हाँ क्या,
अलफ को मिला अल्लाह बे को मिला।
मुरली में किस अर्थ में आता है अलफ? कौन है जिसको अल्लाह मिला?
प्रजापिता।
बात तो हल हो गई। जिसको अल्लाह मिला है उसको दुनिया में क्या चाहिए? यकी की कंट्रोलिंग चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो अल्पकाल की है।
उस समय वो आत्मा को वो फीलिंग नहीं आया ब्रह्मा बाबा की आत्मा को?
किस बात की?
बे को मिली बादशाही, वो दोनों वो लिखा ना।
हाँ, बे को मिली बादशाही, वो तो फूल के गर्गौटा हो जाएगा। उनको तो नशा ही चढ़ गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही, वो आराम से पड़े हुए थे अपने संगठन के साथ, तो उनको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? सुख मिला ना, तो क्या समझेंगे हम स्वर्ग में हैं कि नरक में? सारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नरक में पड़े हुए हैं और हम अपने संगठन के साथ स्वर्ग में पड़े हुए?
नहीं, वो तो पार्टी समय की बात होगी।
हैं?
वो तो पार्टी समय की बात होगी।
इसी समय की बात है, पार्टी के समय की बात। विश्व का कल्याण हुआ या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं। यही बात अंत में भी होगी। कृष्ण की आत्मा सुख में ही स्टेज में पहुंच जाएगी, उसे कोई दरकार नहीं। उन्हें तो दरकार थी सो पा लिया, चैन की बंसी बजाई और स्वर्ग में चले गए। तो दुनिया को वर्षा मिला या नहीं मिला सुख शांति का, इससे कुछ लेना देना नहीं।
हाँ, तो बच्चों का उस समय शुद्ध मोह भी छूट जाएगा।
किसका?
कृष्ण की आत्मा को।
कृष्ण की आत्मा को शुद्ध मोह छूट गया था 47 में।
उस समय अंत समय का बात।
अंत समय में तो संपूर्ण स्वर्ग स्थापन होगा और स्थापन करने वाले निमित्त कोई दूसरे होंगे। झूठी गीता नहीं होगी, झूठा स्वर्ग स्थापन करने वाली। सच्ची गीता होगी।
67 की जो मुरली चली, ब्रह्मा द्वारा जो भी उस समय का बच्चे थे, ब्रह्मा द्वारा शिव को याद करते थे।
हाँ,
तो उस समय उनका पाप मिटा या नहीं?
जो मीडिया है वो अधूरा है और उसमें प्रवेश करने वाला संपूर्ण है, तो काम संपन्न होगा या नहीं? अरे जिस तन में प्रवेश किया, जिस कपड़े को स्वीकार किया सुप्रीम सोल ने, वो सड़ा हुआ कपड़ा है। उसमें सटका लगे और टूट जाए फट जाए, तो उससे स्वर्ग स्थापन हो सकता है?
नहीं, स्वर्ग स्थापन का बात नहीं पूछ रहा है। जो याद करते थे उसका पाप है या नहीं?
याद से ही स्वर्ग स्थापन होगा, सुख स्थापन होगा, या बिना याद के सुख स्थापन हो जाएगा? और किसकी याद से सुख स्थापन होगा और किसकी याद से दुख स्थापन होगा?
तो फिर उनको पनिशमेंट कैसे करेगा?
श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की याद से सुख स्थापन होगा। क्या?
तो उनको पवित्र रानियां कैसे कहा जाता है?
इनको
कह सकता है जो चंद्रवंशी है।
उनको क्या रानियां?
पवित्र रानी, पवित्र रानी, जन्म जन्म की रानियां कहा जाता है।
वो थोड़े ही पवित्र रानी है, वो सारी जितनी भी बेसिक नाली में वो सारी की सारी पवित्र रानियां है। अभी कभी कवाणियों में कह दिया ये दीदी रानियां तो थोड़ी अष्टदेव में आई है अभी।
नहीं, सारी नहीं, मिक्स तो है ना।
मिक्स है, उसमें जो जो असल चंद्रवंशी है जिन्होंने निराकार को याद किया, जैसे राम वाली आत्मा ने शुरुआत में ही निराकार को तेजी से याद कर लिया तो सिद्धि को पा लिया, आत्मा सूक्ष्म बन गई। ऐसे ही चंद्रवंशी धीमी गति से चलने वाले, उन्होंने उन चंद्रवंशियों ने अगर निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद किया और ब्रह्मा को याद करने के लिए चित्त रखने के लिए मना कर दिया है तो नहीं उस पर ध्यान दिया तो वो चंद्रवंशी आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे?
पीछे रहेंगे। पीछे रहेंगे तो
पीछे क्यों रहेंगे? और बेसिक में चलने वालों के मुकाबले आगे जाएंगे या पीछे रहेंगे? आगे जाएंगे।
बोलो दुर्गते ज्ञान मार्ग सदते लेकिन भक्ति विहीन ज्ञान निष्फल कैसे? भक्ति विहीन ज्ञान निष्फल शास्त्रों में
भक्ति विहीन
ज्ञान निष्फल
ज्ञान निष्फल जिसने भक्ति नहीं की होगी उसको ज्ञान कैसे मिलेगा? जिसने जितनी जास्ती भक्ति की होगी उतना ही ज्ञान उठाएगा ना। भक्ति नहीं की होगी तो ज्ञान भी नहीं उठाएगा। विविचारी भक्ति की होगी तो ज्ञान भी विविचारी उठाएगा। अगर आप विविचारी एक की भक्ति की होगी तो ज्ञान भी आप विविचारी उठाएगा। इसलिए कहा हुआ है भक्ति विहीन ज्ञान निष्फल। जिस आत्मा में भक्ति करने के ही संस्कार नहीं रहे पास्ट में तो वो ज्ञान नहीं उठा सकती। जैसे नास्तिक आत्माएं जो नास्तिक धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो भक्ति करती हैं क्या? नहीं करती। तो कितना भी ज्ञान उठा ले उनका सारा ज्ञान निष्फल हो जाए। एक आदमी बोलो
कापाली नशा का मतलब
है?
कापाली नशा
हाथ उठा
अनलिमिटेड
कापाली नशा। एक होता है पांव तक नशा चढ़ा हुआ है, एक तरह एक नशा है पेट तक आ गया, एक नशा है गर्दन तक आ गया, एक नशा है एकदम कपार में पहुंच गया। कहते हैं कापारी, ये कपाल कहा जाता है। नारायणी नशा होता है नारायणी। जब सबसे ज्यादा नशा दुनिया में किसको चढ़ता होगा? नारायण को। क्या मिलने वाला है? नारायणी मिलने वाली है। नारायणी मिली और विशुद्धि भाषा ही मिली तो नशा नहीं चढ़ेगा। कापारी नशा भक्ति मार्ग में भी चढ़ जाता है अल्पकाल का है।
पापा
बोल दीजिए
शरीर बिटरे आमने मिलिट्री शरीर बिटरे ಪ್ಲಾಗ್ನ ವಸ್ತಲ ಬಾಬಾ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಮೇ ಶರೀರ ಚೋಡ್
ಜಾತಾ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಗ್ ಉಪರ ಜಾತಾದರ
ಕ್ಯಾಚರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಗ್ तो उसको सम्मान दिया जाता है। जो भी मरता है वो स्वर्गवासी हुआ और स्वर्ग में वो ही जाता है जीते जी बल शरीर छोड़ दिया। वो ही जा सकता है जिसने अंत समय में तीन मूर्तियों को पहचान लिया। तीन मूर्तियां कौन सी हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो तीन कपड़े हो गए। वो तीन कपड़े जो है वो उसके बन जाते हैं जो युद्ध भूमि में शरीर छोड़ देता है लड़ते लड़ते। पीठ नहीं दिखाता बल शरीर छोड़ देता है तो त्रिमूर्ति बाप उसका बन जाता है। जैसे यहां भी यज्ञ के आदि में जिन बच्चों ने उन विधर्मियों से लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा था वो सब यहाँ एडवांस एनालिजी में आ गए। त्रिमूर्ति बाप ने फिर उनको अपना लिया। तो युद्ध भूमि में जो लड़ते लड़ते शरीर त्यागते हैं वो त्रिमूर्ति बाप उनका बन जाता है। इसलिए वो झंडा जो है आज भी जो भी मरता है उसको झंडे में लपेटा जाता है।
बाप
जी
तो
अरे ऐसे ही है तो और कैसे होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी करते हैं वो यादगार कहाँ की होती है? संगम युग की होती है। तो संगम युग में बाप माँ को डांटेगा गलती करेगी तो माँ तो कम पावरफुल है वो किसको डांटेगी? वो बच्चों को मार पीट के रख देती। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो किसको मारती है? बच्चों को पिटाई कर देती है। तैयार रहो
बाबा। एक माता है वो 9-10 बच्चों की माँ है। कोर्स लेने नहीं चाहते हैं, कोर्स लेने की इच्छा नहीं रखते हैं, बाबा की क्लास बीच बीच में थोड़ा बैठ के सुनते हैं। कोर्स ले लो मैंने कोर्स लेने की इच्छा नहीं रखते। इसको क्या करना?
क्या करना? बाबा ने क्या बोला है? कोर्स ही नहीं लिया, कोर्स ही नहीं भरा और बाप के घर में जाके जन्म ही नहीं लिया। बांधेली माताओं की बात अलग है। बांधेली माता भी नहीं है फिर भी वो कोर्स भी नहीं लेना चाहती, भट्टी में जाकर के कोर्स भी नहीं भरना चाहती। तो बाप के सामने किस संबंध से लाएंगे? क्या संबंध बनेगा? बच्चा बाप के घर में पैदा ही नहीं हुआ तो संबंध क्या बनेगा?
इंटरेस्ट नहीं।
अरे किसी से मिलना जुलना होता है तो किसी लिए मिलना जुलना होता है? कोई दोस्त होता है, कोई संबंधी होता है तो उससे मिलना जुलना होता है। अब कोई कनेक्शन ही नहीं है।
बाबा जगदम्बा माँ पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती है और अंत में राज राजेश्वरी बनती है, तो फिर योगी योगेश्वरी कौन लक्ष्मी माँ?
योग जो है वो चंद्रवंशियों में ज्यादा होगा या सूर्यवंशियों में ज्यादा होगा? चंद्रवंशियों में, सूर्यवंशियों में योग ज्यादा होगा। और जगदम्बा जो है जगत की अम्बा वो बीज रूप आत्माओं में जो बीज रूप आत्माओं की माला है उसमें चंद्रवंशियों की हेड है या सूर्यवंशियों की हेड? चंद्रवंशियों की हेड। बात समझ में आई? आगे आगे समझाने की जरूरत नहीं।
सूरदास तुलसीदास सभी एक ही समय के थे।
हाँ जी।
रत्नावली तुलसीदास की पत्नी की।
हाँ जी।
जगदम्बा की
है।
मीरा दासी कौन है?
वैष्णव। जो मीरा दासी थी वो किसकी दासी थी? कृष्ण की दासी थी। और रत्नावली किसकी दासी थी? तुलसी की दासी थी। तुलसी कहो राम कहो। हाँ तो नई बात क्या पूछ रहे? मीरा दासी कृष्ण की दासी है। अरे अरे गीता है और गीतापति भगवान कहा जाता है। अगर कृष्ण की आत्मा गीता को अपने कंट्रोल में कर ले तो उसकी दासी बनकर के रही कि नहीं रही? हो गई।
योगी योगेश्वरी कौन?
जो योगी है वो सूर्यवंशी होगा या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बोधिवंशी होगा? और योगी
सूर्यवंशी,
वो भी सूर्यवंशी होगा। सूर्यवंशी मणकों में जो पहले नंबर का मणका है वो सूर्यवंशियों का है, दूसरे नंबर का मणका है वो चंद्रवंशियों का है, तीसरे नंबर का मणका है इस्लामवंशियों का है, चौथे नंबर का मणका है वो बौद्धियों का है, ऐसे नंबर वार है। अष्टदेव नंबर वार है कि एक जैसे है? नंबर वार है।
बाबा व्यास भी कबीरदास बनते
थे, ये सच है? व्यास भी कबीरदास बनते हैं? ये कैसे?
दूसरा जन्म में।
ये कैसे?
कबीरदास के जन्म,
दूसरा जन्म कहाँ से? व्यास हुए हैं द्वापर के आदमी और कबीर हुए हैं ये कलयुग में आकर के?
कबीरदास
यही जन्म, वो सच है। अरे बताया ना कि जन्म लेते लेते आत्मा नीचे उतरती है, तो द्वापर के आदि में तो व्यास विशेष रूप से आसन लगा के बैठ गया, उसका नाम है व्यास। किस बात के लिए है?
भगवान व्यास
जो असली ज्ञान है वो द्वापर युग में फिर भी असलियत में था, वो ओरिजिनल शास्त्रों की बातें जो है वो व्यास के द्वारा निकाली गई मुख से। बाद में जो उनके फॉलोअर्स आए वो उनका इंटरप्रिटेशन करते रहे, तो इंटरप्रिटेशन करने वालों में कई जन्मों के बाद फिर कबीर का जन्म होता है। तो कोई प्रूफ तो मिलना चाहिए कि व्यास की ही आत्मा कबीरदास बनती है। ऊंचे कवि कबीरदास, सूरदास या तुलसीदास? तुलसीदास तीनों एक ही है, आत्मा एक ही है। पूरी का दास, तुलसी का दास और कबीर का दास अलग अलग होंगे ना, एक कैसे हो जाएगी? संगम युग में बात हो सकती है कि जो सूर्य है वो चंद्रमा है, पर्सनालिटी में एक ही पर्सनालिटी है। लेकिन ये बात कहने के लिए कि जो व्यास था वही कलयुग में आकर के कबीरदास बनता है, इसका कोई प्रूफ तो चाहिए कि बिना प्रूफ के हो जाएगा? हाँ, ये हो सकता है कि कबीरपंथी जो होते हैं, कबीर को फॉलो करने वाले, वो ये बात बोल रहे हो कि जो व्यास जी थे वो ही कलयुग में आकर के कबीरदास बन गए। तो महिमा बढ़ाने के लिए कहना एक अलग बात है और उसको साबित करना अलग बात।
याद जो प्रकार है ना, एक योगी की याद, एक नियोग की याद, दोनों में कौन सी बात
खुशी ज्यादा किसको रहती है? योगी को ज्यादा खुशी रहती है या वियोगी को ज्यादा खुशी रहती है? ब्रह्मा कुमारियों की याद इस समय वियोगी याद है या योगी की याद है? वियोगी याद है।
जब बाबा को देखते हैं याद
है?
जब बाबा को देखते नहीं ज्ञान माने कोई भी
होने
का देखेंगे, जिसका पहले पूरा वियोग किया तो बहुत ही
वो याद ही नहीं है प्रैक्टिकल में, इसको देखा ही नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों ने तो ब्रह्मा बाबा को देखा है।
बाबा को मुरली सुनते हैं, वाणी को पहचान।
मुरली सुनना और अल्पकाल के लिए पहचानना दूसरों के सुनाए के आधार पर वो एक अलग बात, लेकिन आत्मा प्रयास करके 7 दिन की भट्टी करे, ज्ञान गर्भ में पके,
शांत एकांत में, ये एक अलग बात हो जाती है। ये तो भट्टी का महत्व है। ये भी 9 लाख आत्माएं हैं, इन सबको उस भट्टी में पकना पड़े, तब बाप के बच्चे बनेंगे, बाप के राज्य में आ जाएंगे, बाप की प्रजा बनेंगे। 9 लाख सितारों की प्रजा है, जब तक भट्टी नहीं करेंगे बाप के बच्चे ही नहीं बनेंगे, बाप के घर में जाकर के जन्म लेंगे, तब तक वे उनको खुशी नहीं आ सकती जो योगी की खुशी होती है। अलौकिक जन्म नहीं होता है, वो गर्भ में प्रवेश हुई आत्मा गुप्त बात है। जन्म तो तब कहेंगे जब अपने स्वरूप का
ज्ञान हो जाए, मैं आत्मा ये अमुक पार्टधारी हूं, प्रत्यक्षता हो जाए चारों तरफ कि ये इस देवता की आत्मा है, अमुक माला का ये मणका है, 9 लाख की माला का मणका है, 1 लाख की माला का मणका है, 1000 का मणका है, 108 का मणका है, ये 8 का ऐसे नंबर का मणका है। खुद भी अनुभव हो और जो संगी साथी है संसार में दूसरी आत्माएं हैं वो भी पहचान ले रहे, तब कहेंगे जन्म हुआ असली। और बांधेली आत्मा आज बांधेली है, यज्ञ के आज में बांधेली थी, क्या वो निर्बंधन नहीं बनी? क्या बनी ना, तो लास्ट में आकर के भी फास्ट जा सकती है,
तब तक खुशी का अनुभव नहीं करेगी।
ये खुशी जो है वो अव्यक्त होने की खुशी अलग होती है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि साकार में मिलता है तभी खुशी होती है। खुशी बढ़ती है श्रीमत के अनुकूल चलने से। श्रीमत कहती है कि लौकिक अलौकिक दोनों की तोड़ निभा के चलना है, ना अलौकिक में झगड़े का निमित्त बनना, ना लौकिक में झगड़े का निमित्त बनना। लौकिक वाले भी सुखी रहे और अलौकिक वाले भी सुखी रहे हमारे से,
तो तब तक बहुत खुश रहना पड़ता है।
अच्छी बात है ना, गुप्त वाले को ज्यादा प्राप्ति होगी ना। कहते हैं कृष्ण का जन्म हुआ तो और बच्चे 9 महीने में पैदा हो जाते हैं, और कृष्ण का जन्म 10 महीने से भी ऊपर हो गया गर्भ में पकते पकते, तो पावरफुल बच्चा पैदा हुआ या कमजोर? पावरफुल पैदा हुआ। तो जो भी बांधेली माताएं हैं गर्भ के अंदर कुल मुड़ाए रही है, गर्भ के अंदर तो आत्मा तैयार ही करती है ना, तो जब भी उनको चांस लास्ट में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जब भी लास्ट में चांस मिलेगा तो लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे।
लेकिन ज्ञान में बहुत तीस में गई।
हाँ जी,
फिर भी जल्दी शरीर छोड़ा।
हाँ,
वो कैसे? है इतना ऊंची स्टेज नहीं पहुंचा।
कोई पूर्वजन्म का हिसाब किताब ऐसा बीच में आ जाता है तो शरीर छोड़ना भी पड़ सकता है। पूर्वजन्म का जो हिसाब किताब है वो शरीर छोड़ने के निमित्त बन जाता है। शरीर क्यों को छोड़ना पड़ता है? बाबा ने क्या बोला?
भक्ति का
अगर भक्ति के संस्कार है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उमराजे मम्मा के भक्ति के संस्कार थे या नहीं थे?
लेकिन जान बहुत तीक्ष्ण उठाया।
जो भी तीक्ष्ण ज्ञान उठाया वो भक्तों के बीच में तीक्ष्ण ज्ञानी था या ज्ञानियों के बीच में तीक्ष्ण ज्ञानी था? भक्तों के बीच में तीक्ष्ण ज्ञानी थी। ज्ञानियों के बीच में तो तीक्ष्ण ज्ञानी नहीं कही जाएगी। और अभी भी ओम राधी की आत्मा जो संपन्न रूप में प्रवेश करके पाठ बजाएगी वो भक्ति का पाठ बजाएगी, भक्ति शिरोमणि का, या ज्ञानी का आत्मा का पाठ बजा रही है? अभी भी भक्ति का पाठ बजा रही
है। तब तक तेरे बने सरू का भला नहीं होगा जब तक कोई आत्मा चिट्ठीगढ़ में नहीं जाएगी।
जिसका अपना भला हो गया, जिसकी बुद्धि में बैठ गया, जो पाना था सो पा लिया, तो उसको अपने करने के लिए कुछ रह गया? अपने रथ के लिए कुछ करने के लिए रह गया? स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं रहा। जो स्वार्थ सिद्धि करनी हो फिर वो क्या करेगा? परमार्थ करेगा, दूसरों की भलाई में लग जाएगा। उसे अपने पेट की भी चिंता नहीं रहेगी। भगवान के वाक्य पर पक्का निश्चय हो जाएगा क्या कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते? तो चर्ची कला नहीं होगी।
नारायण हमेशा नारायणी नशा में रहता है तो नारायणी को पता नहीं है कि उनका नारायण
कोई जरूरी तो अपने अपने निश्चय बुद्धि होने की बात है। अगर नारायणी को ये पता हो कि हमारा नारायण है तो उसको नारायण का नशा चढ़ेगा या नारायणी नशा चढ़ेगा? नारायण का नशा। लेकिन वो तो गाया नहीं जाता। वो नंबर दो का नशा है या नंबर एक का नशा है? वो तो नंबर दो का नशा हो गया।
बाबा उनको बचपन से पहले से ही मिले था कि मैं लक्ष्मी बनूंगी, बन के दिखाऊंगी, तो किसको दिखाएगी?
उसको दिखाएगी दीदी दादी को पहले दिखाएगी।
बाबा वो नारायण किसको समझ?
ये बात दूसरी है कि समझती है कि नहीं समझती है तो बात की बात है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया है।
फिर भी ये बुद्धि में आना तो चाहिए कि मेरा नारायण।
हमारा लक्ष्य पक्का है।
बाबा वैष्णव देवी को एडवांस ज्ञान कौन देते हैं सबसे पहले? एडवांस ज्ञान देने वाला कौन?
एडवांस ज्ञान में तीखा कौन है? भाई भाइयों को समझाएं और कन्याएं माताएं कन्याओं माताओं को समझाएं। ये मुरली बोला कि नहीं? अगर भाई जिनको दुर्योधन दुशासन कहा जाता है और वो कन्याओं माताओं को समझाते हैं तो नीचे गिराने के निमित्त बनेंगे, ऊंचे उठाने के निमित्त बनेंगे? वो तो नीचे गिराने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए युक्ति बताई, कन्याएं माताएं कन्याओं माताओं को समझाएं और भाई लोग भाइयों को समझाएं। इसलिए विजयमाला में से जो सबसे श्रेष्ठ रत्न निकलेगा उसको समझाने वाला कौन होना चाहिए? जो ज्ञानी में तीखा हो वो होना चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं कि समझाने वाला क्यों नहीं लक्ष्मी बनता। बाबा ने कहा समझाने वाले जो टीचर हैं वो सत्युग में टीचर ही बन करके रहेंगे और समझने वाले आगे चले जाएंगे।
बाबा बाब जब याद में बैठते हैं बाबा को याद करने के समय में भ्रुकुटी के ऊपर नजर लगाया जाता है और फिर बाबा कैसे दृष्टि देता है ना तो बाबा का दृष्टि तो शरीर के द्वारा लेना पड़ता है।
शरीर में आगे नहीं है।
नहीं नहीं है। हम पूछने का मतलब ये है बच्चे जो बाप को देखता है और बाप जो बच्चों को देखता है इसमें दोनों में फर्क है या नहीं?
कर्म इंद्रियों से कर्म करते याद रह सकती है या नहीं रह सकती?
रह सकती
है। रह सकती है या नहीं रह सकती?
रह सकती
है। अच्छा ज्ञान इंद्रियों से याद करते करते व्यार इंद्रियों से कर्म करते करते नाक से सूंघते हुए कान से सुनते हुए मुख से बोलते हुए आंखों से देखते हुए कर्म हुआ ना, तो कर्म करते याद टिक सकती है या नहीं टिक सकती है? टिक सकती। अब कोई की विविचारी याद टिकती है और कोई की अविविचारी याद टिकती है? अविविचारी याद टिकती है तो उसने देखते हुए देखा या नहीं देखा? उस कर्म का देखने के कर्म का क्या रिजल्ट होगा उसके लिए?
नहीं लगेगा।
नहीं लगेगा। देखते हुए न देखने का हिसाब बन जाए। सिर्फ ज्ञान इंद्रियों की बात नहीं है तो कर्म इंद्रियों की भी बात है। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए अगर बाप की याद में पक्का है तो क्या रिजल्ट आवेगा? लगाव लगेगा या नहीं लगेगा? अटैचमेंट आवेगा या नहीं आवेगा? नहीं आवेगा।
बाबा
हाँ। के आदमी रामबा लैब में ऐसी जॉब कर चले जाते हैं ना, तब फिर से जन्म लेके आते हैं ना, उनको बेसिक ज्ञान को मिलता है। बेसिक ज्ञान देने के निमित्त तो वो ही बनेगा जो यज्ञ के आदमी धारणा स्वरूप होगा। ज्ञान किसको कहा जाता है? धारणा वाले को कहा जाता है या जिसमें धारणा नहीं हो उसको कहा जाता है? राजाओं में ज्यादा धारणा रही या भारत की रानियों में ज्यादा धारणा रही? रानियों में ज्यादा धारणा रही। तो यज्ञ के आदि में ऐसी रानी कौन सी थी जिसमें ज्यादा धारणा थी? राधा बच्ची ना।
लेकिन ज्ञान अब कन्या माता है, कन्या माता को देना पड़ता है, भाई लोग भाई को देना पड़ता है आपको। अब बताए
तो यज्ञ के आदि में ज्ञान देने वाला कौन था? पवित्रता का टीचर कौन है? राम के लिए भी कौन है? राम के लिए भी प्योरिटी का टीचर कौन है? अरे तो आदमी थी वो अंत में भी निमित्त बनती है।
अर्कावती नदी जाते
हैं,
अर्कावती पानी जाते हैं नदी नदी जाते हैं, एक तरफ कावेरी नदी जाते हैं और दोनों मीटर से संगम होते हैं ना, फिर भी वो मेके दर्द होता है कन्नड़ में और हिंदी में बकरी जम करते है ना, ऐसा बोलते है बहुत थोड़ा दूर है उसके बाद वो थोड़ा पत्थर है वो थोड़ा पार है उधर उसके लिए थोड़ा
समझ में नहीं आया
बताइए। अर्कावती नदी
अर्कावती नदी
अर्कावती नदी फिर भी कावेरी नदी
और अलका नदी दोनों का संगम होता है।
हाँ संगम होता
है।
फिर थोड़ा दूर मेके दाट पड़ता है कन्नड़ में और बकरी जम करने का ऐसे बोलता है हिंदी में, हिंदी में बकरी जम करते है ना है जम
संगम को।
हाँ नहीं नहीं थोड़ा
कहता है
दाट बोलता है
मेके जाट माना हिंदी में कहा जाता है बकरी उड़ना
बकरी हाई जंप लगाती है। किसका हाई जंप लगाती है?
वो जगह का गायन है वो जो दोनों का जो संगम
जहाँ जहाँ दोनों नदियों का संगम होता है आपका महादेवी का अक्कावती अक्कावती एक मिनट अक्कावती और कावेरी दोनों का जहाँ संगम होता है तो संगम के टाइम पर कोई बकरी है जो दोनों को जंप कर जाती है ना। ये बात पूछ रहे इसका अर्थ क्या है?
पहाड़ है पहाड़ हाँ इस तरफ पहाड़ है किधर इस तरफ पत्थर है और बीच में ऐसा है
दोनों नदियों का मेल है
ऐसा जंप करता है
हाँ
इसके लिए मैं क्या डांट फोड़
वो पहाड़ से ये पहाड़ को जंप किया
हाँ
बकरी ने
तो जगह को बोलते हैं मैं के
दाँत हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो बकरी तो मैं करने वाली माया बेटी ही होगी। बकरी कौन होती है? मैं करने वाली माया बेटी। वो कहती है कि मैं ही स्वर्ग स्थापन करूंगी। क्या गीता का भगवान कृष्ण के रूप में जो पाठ बजाता है वो तो शरीर छोड़ गया। क्या अब नई दुनिया की स्थापना मैं करूंगी। तो मैं करने वाली जो बकरी है वो दोनों नदियों को क्रॉस कर जाती है। कौन कौन सी नदियों को? एक कावेरी नदी। कावेरी शब्द बनता है कऊ कऊ माने कौआ है कऊ कऊ माने कौआ एरी माने एरी किसी को बुलाती है ना कोई को बोला एरी इधर तो कऊ और एरी माने कौओं के रूप में पार्ट बजाने वाली कोई फीमेल कौआ है। क्या फीमेल कौआ? कौआ क्या करता है? गंध खाता है। गंध कहा जाता है व्यभिचार की गंध। व्यभिचार की गंध खाने वाली एरी उसका नाम पड़ गया कावेरी। तो कावेरी जो है वो मिलती है जाकर के अक्कावती अर्कावती ज्ञान का अर्क अर्क माना सार। जो ज्ञान का सार है ना वो जिसको मिलता है उसको कहते हैं अर्कावती। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार है पवित्रता। ज्ञान का सार है प्योरिटी। जहां आत्मिक स्टेज होगी वहां प्योरिटी होगी। प्योरिटी में अर्कावती का पार्ट किसका हुआ? वैष्णवी देह। और कावेरी जो है वो कौओं के रूप में फीमेल कौआ का पार्ट बजाने वाली कोई ऐसा पार्टधारी है जो मिलता तो सच्चा ज्ञान है उसको लेकिन वो फंस जाती है किसी तरह झूठे विष्णु के चक्कर में। क्या इसलिए उसका नाम पड़ता है कावेरी। तो कावेरी और अर्कावती वती माने वाली अर्क ग्रहण करने वाली माने ज्ञान का सार ग्रहण करने वाली कौन हुई? वैष्णवी देवी। तो जो झूठा विष्णु है झूठे विष्णु का ज्ञान उठाने वाली है उसका जब मेल होता है अर्कावती से माने वैष्णवी देवी से तो उन दोनों को क्रॉस कर जाती है कौन? माया बेटी। कैसे क्रॉस कर जाती है? वो हाई जंप लगाती है बुद्धि से सरेंडर हो जाती है। और कोई आत्मा बुद्धि से सरेंडर नहीं हो पाती पहले पहले न वैष्णवी देवी न जगदम्बा न गंगा न कोई, और वो बुद्धि से सरेंडर हो जाती तो हाई जंप लगाती है ना। इसलिए बाप के समान उसको टाइटल मिल जाता है। क्या टाइटल मिलता है? सर्वशक्तिमान। फिर तो उसे अष्टदेवों की लिस्ट में आ जाना चाहिए है? अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं आती क्योंकि उस समय तक टू लेट हो जाता है। और
सिर्फ मनुष्यों के साथ होती है या अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे से भी होती है?
पेड़ पौधों को मनुष्य काटता नहीं है। जब पेड़ पौधों की टहनियां और ये क्या नाम उसकी जड़ें काट दी जाती हैं आदि, तो वो कुमलाने नहीं लगता है? वो भी कुमलाता है ना, माने जड़ तो मेरी आत्मा उसमें भी है, तो हिसाब किताब तो बना ना। जैसे जानवरों के साथ हिसाब किताब बनता है वैसे पेड़ पौधों के साथ भी हिसाब किताब बनता है। जंगल काटना पाप है या पुण्य? पाप है। पशु पक्षियों को मारना ये पाप है या पुण्य? पाप है। उनमें भी आत्मा होती है। मनुष्य में चैतन्य आत्मा है और उनमें जड़ तुम्हें ही आत्मा है।
संगम युग में जब पक्का बाबा को याद करते हैं तो रामकृष्ण आत्माओं के साथ साथ आते हैं ना?
जी
जो जो पक्का बाबा को याद करते हैं मना जितना टीका याद करते हैं उतना रामकृष्ण आत्माओं के साथ साथ आता है। सौराशी जन्म में
पक्का याद माने क्या? पार्टी मार के बैठ जाते हैं है? पक्का याद माने क्या?
श्रीमद को खुला पूरा फारा पर
श्वास याद। तो श्वास याद कौन करेंगे? जो पार्टी मार के बैठ जाएंगे वो याद करेंगे या जो कर्म करते रहेंगे और याद में भी बने रहेंगे वो याद करेंगे? जिन्हें कर्म करते याद आती रहेगी वो पक्का याद करेंगे या जो पालकी मार के बैठ जाएंगे वो याद करेंगे? तो जो हड्डी हड्डी सेवा में गला देते हैं क्या? हड्डी हड्डी सेवा में गला देते हैं। जो बोला है योगियों के लिए चार घंटे की नींद काफी है, माने चार घंटे नींद करते हैं और बाकी सब ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं। तन भी लगाते धन भी लगाते मन भी लगाते, उन सबसे उन बच्चों को कौन याद करता है? बाप याद करता है। बच्चों में तो नंबरवार ताकत है और बाप तो सर्वशक्तिमान है, तो वो जिन बच्चों की बुद्धि को खींचेगा याद में उनकी याद तीखी होगी या धीमी होगी? तीखी याद हो जाती है। तो वो जन्म जन्मांतर बाप के नजदीक नहीं आएंगे? आएंगे।
बात ये है ऐसा जैसा गायन है उसी तरह से संगम युग में सभी आत्माओं के लिए मोह के वर्ष दूसरे देहधारियों के याद भी ज्यादा सताते है ना, वो भी तो शूटिंग में हो सकता है ना। उसी तरह से संगम युग में जो भी पुरुषार्थी बचे हैं,
एक बात पूरी बात बताइए
नहीं, जैसा जितना याद में पक्का होता है उसी तरह से रामकृष्ण आत्माओं के साथ साथ आते हैं। उसी तरह से संगम युग में जो शूटिंग पीरियड में जो भी पुरुषार्थी बच्चे हैं उनके साथ साथ मोह जो देहदारी जो संबंधी है उसी से मोह भी लगता है ना, तो उनका भी याद ज्यादा आने लगता है। तो वो कैसा चौराशी जन्म
उनसे हो रही? जो जिसको याद कर रहा है शूटिंग पीरियड में उसकी शूटिंग किसके साथ हो रही है? उसी के साथ शूटिंग हो रही,
उसी के साथ हो रहा है।
ओके,
सौराशी जन्म में माना उसी के साथ संबंध रहेगा।
अगर कोई ऐसा है जो किसी देहधारी को याद कर रहा है बाबा को उतना याद नहीं कर रहा है और सारा संघ में वो देहदारी की ही उसको ज्यादा याद है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा जन्म किसके साथ होंगे? उसी देहदारी के साथ होंगे।
लेकिन वो देहदारी शिव बाबा को भी याद करेंगे
हाँ, तो नहीं होंगे। दोनों दोनों तरफ से पार्ट बजाना चाहिए, एक तरफ से कनेक्शन हो दूसरी तरफ से कनेक्शन बिल्कुल ना हो, तो दोनों हाथों से ताली नहीं बजी।
समय याद की बदले ज्ञान की तरफ से याद आता है, याद की तरफ में तेज कम है, ज्ञान की तरफ से याद ज्यादा है, तो तब क्या क्या हाल है?
सेकेंडरी याद हो गई, फर्स्ट क्लास याद नहीं है। यहाँ मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चल रहा है, ज्ञान बुद्धि में चल रहा है, वो फर्स्ट क्लास याद नहीं है। किसी को याद किया जाता है तो उसका रूप याद आता है, वो रूप जिस स्थान में है जिस व्यक्ति में समाया हुआ है वो याद आता है, व्यक्ति भी याद आएगा, स्थान भी याद आएगा, वो भी याद आएगा।
कौन सा ज्ञानेन्द्रिया कौन सा है और कर्मेंद्रिया कौन सा है?
यही अभी तक नहीं मालूम। और कोई भी संगी साथी से पूछ लेना, कोई भी बता देगा।
अभी बोलो ना, वो पाई लोग को देना पड़ेगा, पाई लोग को देना पड़ेगा।
पड़ेगा नहीं, देना चाहिए,
देना चाहिए।
भाई लोग भाइयों को समझाएं और कन्या माताओं को समझाएं,
उनका साथ वो लोग भी आ जाता है। युगल उस समय क्या करना पड़ेगा?
युगल है ना साथ में?
हाँ युगल है।
हाँ तो और अच्छी बात है,
माता लोग है,
दोनों साथ में है तो अच्छी बात है ना। लक्ष्मी नारायण हो गए समझाने वाले, और क्या चाहिए?
नहीं वो अलग आते हैं ना भाई लोग,
उनको उनको समझना है कि लक्ष्मी नारायण बन करके आए हैं या भाई ने लक्ष्मी को पूरा कब्जे में कर लिया है।
नहीं, एक दिन अकेला आया दूसरा माता के साथ, फिर भी दूसरा दिन युगल साथ आया।
साथ में हो तो अच्छा ही है।
गंगा कहाँ से निकलती है? रुद्रमाला से निकलती है।
गंगा गौमुख से निकलती है, भूल गए?
लेकिन एक तरफ विष्णु के चरण से गंगा आती है, एक तरफ विष्णु के चरण से गंगा आती है।
एक बार विष्णु के चरण से दिखाई गई है, लेकिन आज कलयुग की दुनिया में कहाँ से गंगा निकलती है? गौमुख से निकलती है। यज्ञ के आदि में विष्णु के चरणों से निकली होगी।
शंकर ने शुक्र परमात्मा तीसरा नगर दिखाते हैं, परंतु त्रिमूर्ति में कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं दिखाता, तीसरा नेत्र भी नहीं दिखाता शंकर को, चंद्रमा को नहीं दिखाता, कुछ भी नहीं दिखाता।
हाँ, तो त्रिमूर्ति में जो अभी तीन मूर्तियां हैं उनमें संपन्न रूप से प्रवेशता नहीं हुई होगी जो सब कोई देख पाए, अभी गुप्त रूप से प्रवेशता हुई होगी, इसलिए आंख को प्रत्यक्ष नहीं दिखाया गया। जो तीन मूर्तियां बनाई गई हैं वो तीन मूर्तियां अभी जो बनाई गई है वो एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है? इनएक्यूरेट है। जब संपन्न स्टेज होगी तो एक्यूरेट चित्र बनेगा।
और वो नवजात है तब बट्टी तो देखेगी में, या 2018 के पहले बट्टी खुद करेंगे या 2018 के बाद खुद करेंगे?
पहले बट्टी पूरी होनी चाहिए या पहले राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होना चाहिए? पहले तो बट्टी पूरी हो, फिर बच्चे से सालम बुद्धि बने, पुरुषार्थी बने, कंचन काया बनाए, तब संपन्नता हो, फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म हो। दुनिया में भट्टी तो चलती रहेगी अंत तक।